श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 26। अब इस प्रश्न में उत्तर दिया जाएगा किस प्रकार से व्यक्ति बड़ी आसानी से और एकमात्र यही तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणों को पार कर सकता है। माम च यो व्यभिचारेणा भक्ति योगे न सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रगति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। शब्दों को समझिए, अव्यभिचारेण भक्ति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति ज्ञान और कर्म से अनावृत भक्ति का संपादन करे। इस पे मैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देखूंगा, उसके बाद बलदेव विद्याभूषण जी की और फिर प्रभुपाद जी का तात्पर्य। यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुणों से कैसे पार हो इसके बारे में भगवान इस अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। तो यहाँ पे शब्द है माम च, च का अर्थ है केवल, अर्थात भगवान श्याम सुंदर के सेवा करके ही, भगवान परम सुंदर भगवान कृष्ण की सेवा करके ही भक्ति योग के माध्यम से वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करेगा या फिर वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। यानी केवल वही व्यक्ति जो केवला भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, शुद्ध भक्ति जो कृष्ण के प्रति अर्पित की जाती है उसको करके ही ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। और इसको अन्य श्लोकों में भी पूछा के बताया, भगवान ने इसको उद्धृत किया है, जैसे भक्त्याहम एकया ग्राह्या भागवतम का श्लोक है कि यह भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते, यानी जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वही भौतिक जगत को पार कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी जो शब्द है माम एवा मतलब केवल, यानी केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर के ही व्यक्ति भक्ति के माध्यम से जो कि जो भक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित है वह ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और किसी तरीके से भी ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो वह किस प्रकार का भक्ति योग है? तो बोल रहे हैं जो कभी भी भगवान के चरणों से अलग नहीं होता, अव्यभिचारी। व्यभिचार का अर्थ होता है जैसे कोई स्त्री या पुरुष, अब पर्टिकुलर स्त्री के बारे में बोलता है, स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और के संग करे पर पुरुष का संग करे तो व्यभिचार कहलाता है। तो अव्यभिचार का अर्थ है भगवान कृष्ण ही हमारे पति हैं स्वामी, उनकी ही शरण करना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी भक्ति छोड़ करके किसी और मार्ग को स्वीकार करना, ये व्याभिचारी हुआ। लेकिन अव्याभिचारी का मतलब केवल भक्ति को ही साधन और साध्य के रूप में स्वीकार करे और भक्ति का ही आश्रय ले। वही इसका अर्थ है कि ज्ञान और कर्म या योग इत्यादि का सम्मिश्रण ना करे, क्योंकि निष्काम कर्म को भी निरस्त किया गया है और ज्ञान को भी निरस्त किया गया है। ज्ञानम च मई संन्यासेत, श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 19वां अध्याय एक पहला श्लोक में भगवान कहते हैं कि ज्ञान को भी भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भक्ति योग को त्याग देना चाहिए। इसका अर्थ है कि ज्ञान त्यागने के बाद भी ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव, ज्ञान के प्रयास को त्यागने के बाद भी व्यक्ति को भक्ति योग करते रहना है। तो यानी कि ज्ञानी पहले कर्मयोग कर रहा था, उसने कर्मयोग त्यागा और वो ज्ञान का ज्ञान योग का अनुशीलन करता है, और जब ज्ञान योग में ज्ञान को त्यागता है और भक्ति को आश्रय करता है तब वह गुणों से पार हो पाता है। यानी भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति गुणों को पार कर सकता है, केवल ज्ञान मात्र से नहीं, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो अनन्य भक्त है वह गुणों के प्रारंभ से ही दूर है, अर्थात और इसको भगवान 11वें स्कंद में बोल रहे हैं 11:25-26 में, निर्गुणों मद अपाश्रय, कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वो प्रारंभ से ही गुणातीत होता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे हरा आम और पीला आम, जो हरा आम है वह भी पेड़ से जुड़ा हुआ है और कालांतर में वो पक करके पीला आम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आम परिवर्तित हो गया है, वो खाली परिपक्व हो गया है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ नया भक्त भी गुणातीत होता है अगर वह पूर्ण रूपेण कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। एक सिद्धांत बता रहे हैं, सात्विक कार्य को संगी रागांधो राजसः स्मृतः तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रय। ये 11वां स्कंद का श्लोक है 11:25-26 कि जो व्यक्ति निरासक्त होकर कार्य करता है वह सत्वगुण से प्रभावित होता है, जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के द्वारा अंधा होकर के कार्य करता है वह रजगुण में कार्य करता है, और जिस व्यक्ति को सही गलत का अंतर ही पता नहीं है वह व्यक्ति तमोगुण में कार्य करता है। लेकिन जिसने मेरा आश्रय लिया है, भगवान कृष्ण का आश्रय लिया है, तो समझ में आना चाहिए कि वह व्यक्ति गुणों से, प्रकृति के गुणों से मुक्त है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि व्यक्ति मान लीजिए फूल ही चुनना जानता है, लेकिन अगर वो फूल भगवान के लिए चुन रहा है तो गुणों से मुक्त है। बड़ा सुंदर है, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं बस गुरु के मार्गदर्शन में उन कार्यों को कृष्ण के लिए करना सीखना है। जैसा कि भगवान ने 11वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोला था, मत कर्म करन मत परमो मत भक्त संग वर्चता। तो इस प्रकार से भगवान के कर्मों में लगे रहने से, भगवान की सेवा में लगे रहने से व्यक्ति गुणों के संग से दूर रहता। तो समझ में आना चाहिए कि जो व्यक्ति निरासक्त भाव से काम कर रहा है, या तो वह कर्म योग कर रहा है या ज्ञान योग कर रहा है, और वो सत्वगुण के स्तर पे है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है वह गुणों के पार है, और वह भगवान की शरण लेने के कारण वह साधना भक्ति का अभ्यास कर रहा है। तो जो ज्ञानी है वह जब ज्ञान की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता है तो वह गुणातीत हो जाता है, जब वह उस सत्वगुण को भी से ऊपर उठ जाए। लेकिन जो भक्त है वो साधना की शुरुआत से ही गुणों से अलग रहता है, और यही ये श्लोक बताता है। 11:25-26 श्लोक है, ये बताता है कि साधक जो है, भक्त है, वह भक्ति में पूर्ण रूपेण संलग्न होने के कारण, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं, पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो व्यक्ति साधना की शुरुआत से ही गुणों से मुक्त है। ध्यान देना चाहिए, अविचलित भाव का अर्थ है मतलब जब हम भक्ति कर रहे हैं तो रजगुण तमोगुण सत्वगुण का काम होता रहेगा, लेकिन उनसे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति को अपने भक्ति के कार्य नियमित रूप से करते रहने चाहिए। ये बात है। श्री स्वामी भी कह रहे हैं कि च का अर्थ है केवल, मतलब ये एक लिमिटेशन लगा दे रहा है, ये नियम लगा दे रहा है कि भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति गुणों से मुक्त हो सकता है। और मधुसूदन सरस्वती भी कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान नारायण की, कृष्ण की सेवा करता है बिना भक्ति के पथ से विपथ हुए, जैसा कि 12वें अध्याय में बताया गया है, तो निश्चित रूप से वह मुक्ति के लिए अपने को योग्य बना लेता है। अब हम लोग श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका को देख रहे हैं। बहुत सुंदर टीका है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए हम थोड़ा सा और इसको गहराई में जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति गुणों से पार कैसे होगा। तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि चा शब्द, हमने पहले भी चर्चा कर लिया था, ये दिखाता है कि केवल भक्ति करके ही व्यक्ति गुणों को पार कर सकता है। जो व्यक्ति सिद्धांतिक रूप से समझ रहा है कि जीव किस प्रकार से गुणों से अलग है, जैसे कि 19वें श्लोक में बताया गया था, वह व्यक्ति गुणों से मुक्त नहीं होता केवल इस ज्ञान के माध्यम से। तो यानी कि इस ज्ञान को समझ लेना कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा, इसके बाद उसे सेवते, अर्थात यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भक्ति योगे न सेवते, कृष्ण की भक्ति योग से सेवा करनी होगी। क्यों? क्योंकि भले भगवान विभिन्न रूप में आ रहे हैं, जैसे नारायण रूप है और मत्स्य अवतार के रूप में है, लेकिन भगवान कभी भी माया के गुणों के द्वारा स्पृष्ट नहीं होते, अपितु वो मायाधीश हैं, माया को कंट्रोल में रखते हैं, और भगवान का जो स्वरूप है वो शुद्ध ज्ञान और आनंद से पूर्ण है। भगवान विभिन्न दिव्य गुणों के खान है, और जैसे कि सर्वज्ञता इत्यादि, और जो कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है भक्ति योग के द्वारा, वह निश्चित रूप से गुणों को पार कर जाता है। शब्द आया है कल्पते, ब्रह्म भूया या कल्पते, और जो उसका स्वरूपगत स्वभाव है कृष्ण के सेवक के रूप में, जिसमें कि आत्मा के 8 गुण भी हैं, अर्थात पाप नहीं करना, मृत्यु नहीं होना, बुढ़ापा नहीं होना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, शोक नहीं होना, सत्य संकल्प होना और सत्यनिष्ठ होना,
ये सारे गुण हैं जो आत्मा के, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते रहने से। इसीलिए जब बार बार प्रश्न करते हैं भक्त, हमारा ये दुर्गुण कैसे नष्ट होगा, हमारा वो दुर्गुण नष्ट कैसे नष्ट होगा, बस भक्ति करिए। जब भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप सारे सद्गुण अपने आप ही प्रकट होते चले जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जहां पे श्रील बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं, वो कहते हैं भक्ति करके व्यक्ति अपने स्वरूप को प्राप्त होगा, ब्रह्म को प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका स्वरूप नष्ट हो जाएगा, भगवान से उसका जो गुणात्मक साम्यता है वो तो होगी, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि वो भगवान में जाके मिल जाएगा और भगवान की सेवा नहीं करेगा। तो इसलिए आध्यात्मिक जगत में जाकर के जैसे भगवान ने श्लोकों में बोला है, सामदभावम याति मम साधर्म आगतः मदभावम सोध गच्छति, इत्यादि श्लोकों में बताया है 14वें अध्याय के। तो कह रहे हैं इसका अर्थ है कि भगवान के भाव को प्राप्त होगा, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएगा, भगवान के धाम में उनकी सेवा करने के योग्य बन जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति भगवान में जाकर मिल जाएगा। और इस चीज को हमने क्लियर किया था 14.2 में, जिसमें भगवान बोलते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रितः, इस ज्ञान का आश्रय लेकर के बहुत सारे भक्त लोग भगवान के भाव को प्राप्त किए हैं और वहां पे बहुत से लोग किए हैं, मतलब सब लोग जाके मिल नहीं गए हैं। अगर सब लोग जाके मिल जाते तो फिर एक ही आत्मा होती, लेकिन बहुत से लोग किए हैं, अर्थात बहुत से लोग वहां पे हैं अपने स्वरूप में, अपने व्यक्तित्व को बनाए रखे। ये सब बात महत्वपूर्ण हमने समझाई है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य को देखते हैं। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। अब तो आप समझ में आ रहा होगा, तात्पर्य बहुत आसान है। प्रश्न है दिव्य स्थिति को प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। चमत्कारिक रूप से प्रकृति गुण कार्य कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की विविधताओं को प्रस्तुत कर रहे हैं, और उस चमक धमक में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। इसकी चर्चा हमने पहले भी करी थी कि गुण हम पर हमारे चित्त पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन हमें कार्य वैसे करने हैं जिससे कृष्ण प्रसन्न हो। तो इसके द्वारा हम गुणों का संग नहीं करते हैं और गुणों के प्रभाव से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा भोग खाने का मन है, मतलब वो खाना जो भगवान को अर्पित नहीं है वो खाने का मन है, तो ये रजोगुण है। लेकिन या फिर सतोगुण भी हो सकता है कि भाई फल खाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो फल भगवान को समर्पित नहीं है तो हम नहीं खाएंगे, भगवान को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण करेंगे, तो वो हम गुणों से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात हैं, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। देखिए अभी यही गीता भूषण में बलदेव विद्याभूषण जी समझा रहे थे, कैसे भगवान राम की सेवा करे, नारायण की सेवा करे, विष्णु की सेवा करे, कृष्ण की सेवा करे। भगवान के किसी भी विष्णु रूप की सेवा करता है तो व्यक्ति दिव्य हो जाएगा, क्योंकि वो सारे भगवान के रूप जो है चिन्मय है और वो शुद्ध सत्व में है, वो गुणों से कभी स्पृष्ट नहीं करते, उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण के जो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है जो भगवान श्री राम के भक्त हैं उनका वो अनादर करे, या भगवान विष्णु की जो सेवा कर रहे हैं उनका वो अनादर करे, ना, वह भी दिव्य पद पर स्थित है अगर वो अविचलित भाव से पूर्ण रूप से भक्ति में प्रवृत्त है। और ये देखना चाहिए, यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णता दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अगर आपको ध्यान हो, ये श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका से ही प्रभुपाद समझा रहे हैं। कितना सुंदर है, कितने निष्ठा है प्रभुपाद जी की पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उदाहरण से आप समझ जाएंगे। पहली बात तो सिद्धांत यह है कि भगवान इन गुणों को नियमित करते हैं, माया के स्वामी भगवान है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है तो भगवान की आज्ञा से माया उसको छोड़ देती है। जैसे एक बार हम एक महाराज जी बता रहे थे कि जब वो भक्त नहीं थे तो वो अखबार बेचने का काम करते थे, तो वो लड़के थे, और एक व्यक्ति के अखबार देने जा रहे थे तो उनके घर में बहुत बड़ा कुत्ता था, बहुत भयानक था। तो जैसे वो अखबार देने के लिए अंदर गए तो कुत्ता झपटा उनके ऊपर, लेकिन जैसे ही उनके मालिक को उन्हें पुकारा तो मालिक ने एक सीटी मारी और वो कुत्ता पीछे चला गया। तो उस कुत्ते से लड़ने की शक्ति उस मतलब महाराज जी के पास नहीं थी, उस लड़के के पास नहीं थी, लेकिन मालिक की शरण जाना या मालिक को पुकारने की शक्ति थी, और जैसे ही मालिक को पुकारा मालिक ने एक सीटी मारी और वो कुत्ता पीछे चला गया। इसी प्रकार से माया से लड़ने की शक्ति शूद्र जीव में बिल्कुल नहीं है, लेकिन भगवान को पुकारने की शक्ति है, और भगवान के लिए माया का आवरण हटाना बहुत आसान है। तो उसी प्रकार से हमें समझ में आना चाहिए, ऐसे तो गुणों को जीतना बहुत कठिन है जैसे प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं और हम समझ भी सकते हैं अपने अनुभव से, लेकिन अगर भगवान की सेवा व्यक्ति करता है तो फिर वह भगवान की कृपा से गुणों को बड़ी आसानी से जीत सकता है। इसकी व्याख्या सातवें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांगा जा सकता है। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंतिते। यहाँ पे प्रभुपाद श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका को ले रहे हैं। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं, जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्तियों का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्तियों का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, और भगवान के और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। समझ में आना चाहिए कि भक्ति एक शाश्वत प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं है कि हम जब मुक्त हो जाएंगे तो कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, अभी तो भक्तों की इच्छा होती है कि भगवान के धाम जाकर के भगवान की व्यक्तिगत सेवा में लगें। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि भक्त अपना व्यक्तित्व कभी नहीं त्यागता, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्रह्मवादी हैं वो अपना व्यक्तित्व त्याग देते हैं। ना, आत्मा अविनाशी है, चाहे वो ब्रह्म में रहे चाहे भगवान के धाम में रहे, अपने व्यक्तित्व को कभी नहीं त्याग सकती। दिक्कत यह है कि ब्रह्म की प्राप्ति करने के बाद भी क्योंकि व्यक्तित्व नष्ट होता नहीं है और कृष्ण की सेवा नहीं मिलती है, तो इसलिए फिर वो वापस भौतिक जगत में आ जाता है। आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति नादृत युष्मात् पदांग्रयः। इस परम पद को प्राप्त करके, ब्रह्म पद को प्राप्त करके भी अगर कोई कृष्ण की सेवा नहीं करता है, कृष्ण की सेवा का सुख प्राप्त नहीं होता, तो उसे वापस इस जगत में गिरना पड़ता है। इसी बात को समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान से साम्यता प्राप्त हो भी जाए, अर्थात आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए, पूरी तरह स्पिरिचुअल हो जाए, फिर भी कृष्ण की सेवा करना उसके लिए बहुत आवश्यक है, और इसी के द्वारा वो सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। उदाहरणार्थ राजा का निजी सेवा सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक है। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्माप्येति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। अर्थात बहुत सिंपल शब्दों में कहे तो आत्मा अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करती है भक्ति करके, जैसे आपने लिखा है ब्रह्म भूया कल्पते, लेकिन स्वरूप प्राप्ति करने का अर्थ है कृष्णेर जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, अर्थात कृष्ण के दास के रूप में आप में उपस्थित हो जाता है और उसको स्पिरिचुअल शरीर मिल जाता है, चिन्मय देह मिल जाता है, जिससे बड़े आनंद के संग, असीमित आनंद के संग वो सदा सदा के लिए कृष्ण की सेवा करता है। और उसकी शुरुआत भक्ति की साधना, भक्ति की शुरुआत से ही होती है। हरा आम और पीले आम वाली बात है। तो यानी हमने क्या सीखा, गुणों का अगर हम संग नहीं करना चाहते, गुणों को लांघना चाहते हैं, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है अविचलित भाव से, और रोज करना है, नियमित रूप से करना है, हर समय करना है, और चाहे अच्छा लगे बुरा लगे उससे मतलब नहीं है, करते जाना है जब तक हम पूरी तरह अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाते, उसके बाद तो हम शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे ही। तो ये बहुत सुंदर श्लोक था और बहुत सुंदर सोल्यूशन था हमारे पास। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके ही हम तीनों गुणों से मुक्त हो सकते हैं।